Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jo purana vyakti, wo aakar kahe हमसे, स्वामी आत्मचेतन जी आप हैं तो हम क्या कहेंगे, बोलो? नहीं है बोलेंगे कि हां बोलेंगे? हैं, क्या बोलेंगे आप? हां बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब हम जब कहेंगे कि हां मैं आत्मचेतन हूं, तो कोई नया भक्त कहेगा, अरे ये तो आत्मानंद जी है। नहीं नहीं, ये तो आत्मानंद जी है। अब आत्मानंद जी है ना, तो उसको मैं क्या कहूंगा? हाँ, नहीं थोड़ी बोलेंगे। हाँ हाँ, हम आत्मानंद जी है। दूसरा कोई था, अरे आत्मानंद नहीं, आत्मचैतन्य है ना आप, बोले हाँ। अब क्या हुआ भाई, एक ही व्यक्ति का दो नाम हो गए कि नहीं? अब आत्मचैतन्य बड़ा कि आत्मानंद बड़ा, बोलो कौन बड़ा है? आत्मा चैतन्य बड़ा है कि आत्मानंद बड़ा है? ये दोनों नाम जिसके हैं वो बड़ा है। हमको तो व्यक्ति से मतलब है, नाम से क्या लेना है? नाम पर दुराग्रह मत करो। व्यक्ति पहचान लिया, काम बन गया कि नहीं? तुमको व्यक्ति पहचानने से मतलब है, नाम माध्यम बन गया। अब परमात्मा की भक्ति करनी है, उसी परमात्मा का एक नाम हो गया कृष्ण। उस कृष्ण इस नाम के माध्यम से तुम किसकी भक्ति करो? परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करनी है तो एक नाम बन गया शिव। शिव इस नाम के माध्यम से किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की, शिव की नहीं, परमात्मा की। राम एक नाम हो गया, तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो राम इस नाम के माध्यम से किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की। तो भक्ति करनी है परमात्मा की। सबसे बड़ा परमात्मा है, न कृष्ण बड़ा है न शिव बड़ा है, है? कृष्ण प्लस भगवान, क्या बोलते हैं हम? कृष्ण भगवान है, शिव प्लस भगवान क्या बोलेंगे? शिव भगवान, राम प्लस भगवान राम भगवान। राम में कृष्ण नहीं, कृष्ण में राम नहीं, राम और कृष्ण दोनों शिव में नहीं, और शिव राम कृष्ण में नहीं। ये जो शिव राम कृष्ण ये जो नाम है, एक में दूसरे का व्यतिरेक है, है कि नहीं? एक में दूसरे का अभाव है। नाम का एक नाम में दूसरे नाम का अभाव है। कृष्ण इस नाम में शिव नहीं है, शिव इस नाम में कृष्ण नहीं, ये परस्पर व्यतिरेक हैं। लेकिन शिव के साथ परमात्मा है, कृष्ण के साथ भी परमात्मा है, राम के साथ भी परमात्मा है। परमात्मा अन्वय है, परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, कृष्ण का सर्वत्र अन्वय नहीं है। परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, शिव का सर्वत्र अन्वय नहीं है। परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, राम का सर्वत्र अन्वय नहीं है। परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, गणेश का सर्वत्र अन्वय नहीं है। तब क्या हुआ? जिसका सर्वत्र अन्वय है, सभी में अन्वय है, वही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन? परमात्मा। तुमको भूख लगी हो? लग गई? नहीं लगी, बोलो। भूख लगी हो, उस भूख को हटाने के लिए क्या उपाय है तुम्हारे पास? हैं? रोटी खाना है कि भात खाना है, बोलो? रोटी खाने से वो भूख हटेगा कि भात खाने से भूख हटेगा? पूरी खाने से हटेगा कि परोठा खाने से हटेगा, बोलो? क्या खाने से हटेगा? भोजन से भूख हट सकता है, किससे हटेगा भूख? हाँ, किससे भूख हटेगा? तुम भूख हटाने के लिए रोटी खाओगे कि भोजन खाओगे? हाँ बोलो, भूख हटाने के लिए केवल रोटी खाओगे कि भोजन खाओगे? भूख हटाने के लिए केवल भात खाओगे कि भोजन खाओगे? भूख हटाने के लिए भोजन खाओगे कि पराठा खाओगे? भूख हटाने के लिए भोजन खाओगे कि पूरी खाओगे? हा, इसी के यहां खाना खाने गए, स्वामी जी ने पूरी दो। अरे भाई, अभी तो मरा नहीं है, कहां इसको पूरोगे? क्योंकि सन्यासी को तो पूरते है ना, पूरते माने सन्यासी को तो अग्नि संस्कार करते नहीं है, है? तो क्या करते हैं, थल समाधि या जल समाधि? तो जल समाधि में तो पूरने का क्या है, लेकिन थल समाधि जहां होगी, भूमि में जो समाधि दिया जाएगा, तो वहां क्या करेंगे, तब जाकर स्वामी जी को पूर दो, स्वामी जी ने पूरी दो, है? नहीं तो क्या करो बोलो? तो तुम्हें भूख लगी है, उस भूख को हटाने के लिए पूरी खाओगे कि भोजन खाओगे? हैं? भोजन। भोजन से ही भूख की निवृत्ति होगी। ये बात अलग है कि पूरी भी भोजन है, लेकिन केवल पूरी भोजन नहीं है। क्या समझे? केवल पूरी भोजन नहीं, पूरी भी भोजन है, केवल पूरी भोजन नहीं है, पराठा भी भोजन है कि नहीं? और केवल पराठा पूरी नहीं, भोजन नहीं है, पराठा भोजन है, क्योंकि भूख को हटा सकता है, भूख निवृत्त करने की क्षमता पराठा में है। लेकिन यदि कोई कहेगा कि नहीं, हम तो केवल पराठा खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो वह बद्रीनाथ जाएगा तो मर जाएगा। आजकल तो नहीं मरेगा वो, पहले के जमाने में तो कहां पराठा मिले बद्रीनाथ में, केदारनाथ में सत्तू और चिवड़ा बांध कर ले जाते थे। हाँ, सत्तू और चिवड़ा, चना, ये सब सूखा चीज, वो पानी में डाला, थोड़ा नमक डाला, खा लिया, चल दिया यात्री। कहां पूरी, कहां हलवा, ले जी, तुमको भोजन खानी है बस, क्योंकि पूरी, सब्जी, रोटी, हलवा सब कुछ भोजन है, तब तुमको भोजन से भूख की निवृत्ति होगी। अब यदि तुम कहो कि नहीं, मुझे तो रोटी खानी है, रोटी से भूख हटाना है, रोटी के अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो तुमको रोटी तो परिच्छिन्न हो गया, सब जगह रोटी ना भी मिल सकता है, लेकिन भोजन सब जगह मिल जाएगा। हर समय में रोटी नहीं मिल सकता है, लेकिन भोजन, रोटी नहीं तो भात खाओ, देख लो। हम पिछले बार अमेरिका गए, अब ये शरीर में शुगर है, शरीर में शुगर है तो खान पीन में ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना? तो खान पीन में ध्यान रखना है, तो हम तो भात तो खाते नहीं थे। अब एक जगह भोजन के लिए खाली भात रखा हुआ था और कुछ नहीं था, तो नेपालियों के जो सोसाइटी थी वहां चले गए, कम्युनिटी सोसाइटी नेपालियों की, वो तो खाली भात खाते, सब ने खाली भात बना के रखा है, दाल भात तरकारी, सब लोग खाना खाने, महाराज खाना खाइए, तो देखते हैं तो अरे रोटी नहीं है, नहीं महाराज, अब क्या करोगे बोलो? रोटी खाना है कि भोजन खाना है? भूख लग रही है, अब उसको, भूख को हटाना है, हमारा प्रयोजन है। अब हम कहेंगे कि नहीं रोटी खाएंगे, रोटी से ही हमारा भूख जाएगा, तो मरेंगे कि नहीं? तब फिर भात था, भात खा लिए, तो एक यही खाना है, ये दुराग्रह है, इतना ही भोजन है, ये दुराग्रह है, पूरी केवल भोजन है, ये दुराग्रह है, पराठा भोजन है, दुराग्रह है, भात केवल भोजन है, दुराग्रह है, हलवा भी भोजन है, सब भोजन है। भूख निवृत्ति भोजन से होती है, पूरी से नहीं, क्योंकि पूरी से भी होती है, क्योंकि पूरी भी भोजन है। इसी तरह दुख निवृत्ति किससे होती है बोलो? भूख की निवृत्ति भोजन से होती है, तो दुख की निवृत्ति किससे होती है? भगवान से। क्योंकि कृष्ण भी भगवान है, इसलिए कृष्ण की भक्ति कर लो, तो भगवान की भक्ति हो गई तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन तुम यदि कहोगे कृष्ण ही भगवान है, इसके अलावा और भगवान नहीं है कहोगे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तो किसकी भजन करनी है? भगवान के। बस सबसे बड़े कौन है? कृष्ण की शिवा। ये अब समझ में आ गया आपको? सबसे बड़े राम हैं कि कृष्ण हैं कि शिवा हैं कि गणेश हैं? सबसे बड़े परमात्मा हैं, इसलिए किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की। कृष्ण यदि परमात्मा हैं तो कृष्ण भक्ति करो, तुम्हारी कृष्ण भक्ति वृथा बेकार नहीं जाएगा। राम यदि भगवान हैं तो राम भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति वृथा निष्फल नहीं होगा। शिव यदि भगवान हैं तो तुम शिव भक्ति करो, तुम्हारी शिव भक्ति निष्फल नहीं होगा। लेकिन ये दुराग्रह नहीं कर देना भाई, दुराग्रह करके नहीं बैठना। मैं तो केवल शिव की ही भक्ति करूंगा, शिव के अलावा और किसी की नहीं करूंगा, ये कहना मैं केवल पूरी को भोजन मानता हूं, पूरी के अलावा किसी को भोजन नहीं मानता, इसलिए पूरी ही मेरे भोग को निवृत्त कर सकते हैं और पूरी के अलावा और कोई भी मेरे भूख को निवृत्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे इसका मतलब ऐसा अर्थ हो गया। भोजन भूख को निवृत्त करता है, भगवान दुख को निवृत्त करते हैं, भगवान की भक्ति करो। अब उस परमात्मा को उस भगवान को जानने कैसे? जानने का माध्यम क्या है? कौन जानता है परमात्मा को? तो बोले त्रयी वेद्यम हृद्यम। ये वो परमात्मा त्रयी वेद्य है। शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं हे शिव, आपको केवल त्रयी ही जान सकते हैं, त्रयी वेद्य हैं आप। त्रयी वेद्य माने त्रयी का अर्थ वेदत्रय, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। और आप कहोगे कि वेद तो चार है, फिर यहां त्रयी क्यों कह दिया? अथर्व वेद क्या है महाराज? अथर्व वेद वास्तव में इन तीन वेद के मंत्रों का ही संकलन है। अथर्व वेद के मंत्र जो हैं वह ऐसा कोई मंत्र नहीं जो ऋग यजुर और साम में न हो। हर मंत्र अथर्ववेद के हर मंत्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में है, सामवेद में, ये तीन में से किसी न किसी एक में है। उन मंत्रों को विशेष अनुष्ठान के लिए अथर्ववेद इन मंत्रों के उस अनुष्ठान के अनुकूल मंत्रों को मंत्र द्रष्टा ऋषियों ने एक निकालकर एक अलग स्वतंत्र अथर्ववेद के रूप में कल्पना कर दी। लेकिन उसके जारी मंत्र है तीन वेद में, इसलिए मूल रूप में वेद त्रयी तीन ही हैं, ऋग यजुर्वेद सामवेद। तो यही तो हमने गीता के उदाहरण दिया ना आपको, भगवान ने क्या कहा? वेदश्च सर्वैहि अहम एव वेद्य, सर्वैहि वेदैः अहम एव वेद्य, अहम वेदैरेव वेद्य। स्वामी अखंडानंद जी श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी ने इस गीता के श्लोक में, शंकराचार्य जी ने संस्कृत भाषा में ठीक ऐसी व्याख्या की है, वेद्यैरेव अहम वेद्यैरेव। हर मनुष्यों को ये चाहिए कि मुझे अवश्य जाने, अहम एव वेद्य। मनुष्यों के द्वारा जानने योग्य व्यक्ति और वस्तु कुछ है तो वह मैं ही हूं, और को जाने चाहे न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, और को जानो चाहे न जानो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जरूर जानो। मुझे जाने बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए क्या हुआ? अहम वेद्यैरेव, मुझे जानना ही चाहिए। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्ता विद्यतेऽयनाय, उसको जाने बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ? संसार और सांसारिक पदार्थों को नहीं भी जानोगे तो भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन उसको नहीं जानोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला है। तुम जहां के वहीं रहोगे। अपरा विद्या को जानकर क्या कर लोगे, बोलो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? द्विविद्य वेदितव्ये परा चैव अपरा च। और अपरा विद्या को जानकर तुम्हें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तुम्हारा प्रयोजन है दुखत्रय की अत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति तुम्हारा प्रयोजन है, और वो प्रयोजन सिद्ध अपरा विद्या से होने वाला नहीं है। हाँ, यया यद अक्षरम अधिगम्यते तत् परा। हाँ, मुंडक उपनिषद की श्रुति। तो उसको जाने बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? अहम वेद्यैरेव, तुम्हारा कल्याण तो मुझे जानकर ही होगा। अहमेव वेद्य, जानने योग्य केवल मैं हूं, बाकी और जानने योग्य नहीं है। हैं? काम चलाने के लिए जान लो तो जान लो, नहीं तो जानने योग्य नहीं है। जान के क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने के लिए? और तो सब पेड़ गिरने की है, प्रयोजन तो आम खाना है ना, वो तो उसी से प्रयोजन सिद्ध होगा भाई। वेद ही रे, फिर आप जानेंगे कैसे? तो वेद के द्वारा ही मैं जानूंगा। वेद अर्थात औपनिषद। तम तम औपनिषद पुरुषम पृच्छामि। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज मैं उस औपनिषद पुरुष को जानना चाहता हूं। हाँ, उस औपनिषद पुरुष क्या है? औपनिषद माने उपनिषद प्रतिपाद्य जो पुरुष है वो औपनिषद पुरुष है, वो तो फिर उपनिषद के द्वारा ही जाना जाएगा। इसीलिए सही रूप में भगवान शिव क्या है यह वेद के द्वारा ही जाना जाएगा। अतः शंकराचार्य ने कहा, हे शिव त्रयी वेद्यम। आप कैसे हैं? त्रयी वेद्य है, वेद से ही आप पूर्ण रूप में जाना जाएंगे। हाँ? और कैसे आप? तो हृदयम, आप वो जो त्रयी वेद्य स्वरूप है वह हृदयम। हृदय का अर्थ होता है हृदय को अति प्रिय, क्या? हृदय में अपरोक्ष अनुभूत होने वाला। हृदय के अतिरिक्त परमात्मा का अनुभव करने का कोई आलंबन नहीं है। हाँ, चैतन्य का अनुभव अनुभूति कराने वाला एक ही केंद्र है, एक ही पॉइंट है दुनिया में, वो पॉइंट उस केंद्र का नाम है हृदय। हृदय होगा तो वह चेतना अभिव्यक्त भी होगा और चेतना की अनुभूति भी होगी। जहां हृदय नहीं होगा वहां चेतना तो है लेकिन अनुभूति अनुभव गम्य नहीं होगा। तुम्हारे इस कुर्सी में शिव है कि नहीं, बोलो? जिस कुर्सी में तुम बैठे हो उस कुर्सी में शिव है कि नहीं? क्या अपराध कर रहे हो तुम? कुर्सी शिव जी के ऊपर चढ़ के बैठे हो, हैं? तो तुम यही कहोगे कि शिव नहीं है इसलिए ना बैठे हो, नहीं तो प्रत्यवाय लगेगा कि नहीं शिव जी के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। और ये कहां की मूर्खता है भाई? एक तरफ शिव को तुम सर्वव्यापक कहते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि कुर्सी में शिव जी नहीं है, तो ये मूर्खता है कि नहीं? है? शिवजी सर्वव्यापक हैं तो कुर्सी में हैं कि नहीं? कुर्सी में हैं तो तुम शिवजी के ऊपर चढ़कर बैठे हो कि नहीं? अब उस अपराध का कौन क्षमा करेगा? हा? बोलो, उस अपराध को क्षमा कौन करेगा? अब जमीन में शिवजी है कि नहीं? है? जमीन में शिवजी है कि नहीं? अब तुम जूता पहनकर, चमड़े की जूता पहनकर चलोगे तो कहां चलोगे, बोलो? हाँ, भगवान शिव की महिमा पुराणों में ऐसा लिखा है, और शिव महिमा तो तुम लोगों को याद ही है ना। त्वमर्कस्त्वम सोमस తమసి పవనం తం హుతవస్ తమాపస్తం వ్యౌమ తము ధరణి. ये स्तोत्र क्या कह रहा है? त्वमुदरणी, ये जो पृथ्वी है ये गोल क्यों है? बोलो, पृथ्वी चपटी क्यों नहीं है, लंबी क्यों नहीं है, पृथ्वी गोल क्यों है? क्योंकि शिवलिंग हमेशा गोल ही होता है, इसलिए ये शिवलिंग है पृथ्वी. बोलो, अब जूता पहनकर कहां चलोगे? हैं, कहां चलोगे? शिवजी के ऊपर ही चलना पड़ेगा कि नहीं? अब उस प्रत्यवाय से तुम कैसे मुक्त होगे, उस अपराध से तुम मुक्त कैसे होगे? है, क्षमस्व त्रिविधा अपराधम. हे शिव, मेरे से पल पल में, पग पग में, एक एक क्रिया में अपराध हो रहा है. उस अपराध से मुक्ति का एक ही उपाय है कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं. क्योंकि पृथ्वी में यदि कोई व्यक्ति, पृथ्वी में चलते चलते यदि कोई व्यक्ति फिसल गया तो कहां फिसला? धरती में फिसला. और वो प्रयत्न करके उठेगा तो कहां उठेगा? अरे फिसला वहीं, जहां फिसला वहीं उठेगा, तो क्या फायदा हुआ उठने का? है, लेकिन दूसरा आलंबन तो है भी नहीं, तो उठे कहां? धरती में फिसल गए करके यदि धरती में मैं नहीं उठूंगा कहोगे तो फिर पड़े रहो, और उठना होगा तो कहां उठना होगा? उसी में. इसलिए शिव की अवज्ञा यदि हमारे अज्ञानता से या व्यवहार में शिव अवज्ञा अनिवार्य है, होता ही है, तो उसका क्षमा कौन करेगा? तो वही करेंगे. कैसे करेंगे? हाथ जोड़ लो, बस हो गया. क्षमस्व, ये शिवानंद लहरी ऐसे भाव भरा स्तोत्र है. क्या भाव भरा है! बुद्धि को लेकर शिवानंद लहरी सुनने नहीं आना हो, बुद्धि को लेकर शिवानंद लहरी सुनने आओगे तो बुद्धि में तो तर्क वितर्क चलेंगे, और उस तर्क वितर्कों के सामने ये शिवानंद लहरी है वो टिक नहीं पाएगा. ये तो भाव लेकर आओ, क्योंकि हृदय में आकर वो सरोवर के रूप में परिणत होगा. ये तो हृदय में भाव, ये तो भाव पूर्वक श्रवण करने का स्तोत्र है. ये खंडन मंडन करने का नहीं है. यहां तर्क वितर्क उहा पोह खंडन मंडन उसके लिए करो, ब्रह्मसूत्र है. हाँ, न्याय प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र है, करो तर्क वितर्क. लेकिन ये तो भावपूर्वक श्रवण करो. त्रयी वेद्यम, आगे इसके जो चौथा श्लोक है, पांचवा श्लोक, शंकराचार्य ने सबका खंडन कर दिया है, सबका खंडन कर दिया पांचवें श्लोक में. त्रयी वेद्यम हृद्यम, हृद्यम माने हृदय को अति प्रिय, हृद्यम. और हृदय का दूसरा अर्थ होता है हृदय गम्यम, हृदय में अनुभव में आते हैं, हृदय के द्वारा ही, हृदय में ही वह अभिव्यक्त होते हैं. शिव की जो चेतनता है वो हृदय में अभिव्यक्त होता है, शिव की जो आनंदता है वो हृदय में ही अभिव्यक्त होगा, इसलिए उसको कहा हृद्यम. त्रिपुर हरम, तीन पुर को हरण करने वाले. त्रयी वेद्यम का अर्थ कर दिया ज्ञान शक्ति प्रधान शिव, हृद्यम का अर्थ कर दिया है इच्छा शक्ति प्रधान शिव, और त्रिपुर हरम इससे कह दिया क्रिया शक्ति प्रदान शिव. एक ही शिव में ये तीनों शक्ति विद्यमान है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया. त्रिपुर हरम, तीन पुर को हरण करने की क्षमता केवल आप में है, आपके अलावा दूसरे में नहीं है. भगवान शिव का नाम क्या है? त्रिपुरा हरा। और तीन पुर को हरने का क्षमता शिव में कैसे है और में कैसे नहीं है? क्योंकि त्रिपुरासुर को नाश करने की क्षमता और किसी में नहीं दिखी है। पुराण आदि इतिहास पढ़ लो, त्रिपुरासुर को किसने मारा? शिवजी ने। और कोई मारने में असमर्थ हुए, कोई नहीं मार पाए। जब शिवजी से प्रार्थना की गई तो भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को नाश कर दिया। शिव ने त्रिपुरासुर को कैसे नाश किया? क्योंकि शिव ज्ञान स्वरूप है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर। शिव तो ब्रह्म विद्या रूप है, ज्ञान स्वरूप है। विद्यैव तन्नाश विदौ बड़ी ऐसे न कर्म तच्चम सविरोध वीरितम। कारण शरीर को नाश करने की क्षमता किसमें है? विद्या में है, ब्रह्म विद्या में। और वो ब्रह्म विद्या किसका स्वरूप है? भगवान शिव का स्वरूप है। और उपनिषद पुरुष कौन है? शिव है। और उपनिषद जो ज्ञान है वही कारण शरीर को नाश करने में समर्थ है। इसीलिए कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तीन शरीर ही हमारा त्रिपुरासुर का स्वरूप है। तीन शरीर में इस समय हम स्थूल शरीर में विचरण कर रहे हैं, रात को सूक्ष्म शरीर में विचरण करेंगे, फिर और गहरी रात में कारण शरीर में विचरण करेंगे, और फिर सुबह होते हुए स्थूल शरीर में। त्रिपुरासुर की कहानी क्या है? ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगी कि मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व की प्राप्ति तो विद्या से ही, ब्रह्म विद्या से संभव है, वो ज्ञान से संभव है। तमेव विदित्व अति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अनाया। किसी के वरदान देने से कोई अमर नहीं होगा। हाँ, अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से होती। तो कोई और मृत्यु मार्ग, कोई और निमित्त मार्ग। यदि कभी मरना न पड़े ये चाहता है तो आत्मानंद गिरी के चरण में जा, है सदगुरु के पास जाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध पराम शांतिम अचरेण, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदीक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यदि तुम कभी मरना न पड़े ये चाहता है तो जा तत्त्वदर्शी किसी ज्ञानी के पास प्रणिपात होकर जाओ। ये तपस्या तपस्या करने से मिलने वाला नहीं है। यदि तपस्या ही करनी है तो यस्य ज्ञानमयम् तपः, वेदांत विचार रूपी तपस्या कर, तब तू अमर हो पाएगा। और ऐसी तपस्या से तो अमर नहीं हो सकता है। और हमसे यदि तू चाहता है अमर होना तो वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, निमित्त मृत्यु मांगेगा तो हम दे देंगे। बोले महाराज, निमित्त मृत्यु का मतलब क्या होता है? उसने कहा यदि ऐसा हो तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इसको कहते हैं निमित्त मृत्यु। ये निमित्त बने तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। बोले तब ऐसा करो, मुझे तीन रथ दे दो, और वो तीनों रथ एक दूसरे के विपरीत गति से भ्रमण करे, एक विपरीत स्वभाव वाला हो, विपरीत धातु से बना हो, एक ही धातु से ना बना हो, अलग अलग धातुओं से बना हो, है? तीन रथ दे दो, और मेरी ये गति हो कि तीन रथ में अपने मर्जी से मैं किसी भी समय में कहीं भी रथ चेंज करता रहूं, विचरण करता रहूं, घूमता रहूं। और यदि कोई व्यक्ति तीनों रथ को एक ही बार में नष्ट कर सकता है तब तो मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। एक रथ को नष्ट करे मैं दूसरे रथ में बच जाऊं, दूसरा नष्ट करे तीसरे में, तीसरा नष्ट करे पहले में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। और यह संभव था, अभिजीत नामक मुहूर्त में तीनों रथ एक आमने सामने होते थे और भगवान शिव ने अकल्पित अप्रसिद्ध रथ तीरों के माध्यम से त्रिपुरासुर को मारा, ये पुराण की कथा है। रथक्षोणीयंता सतधृति रगेन्द्रो धनरथो रथांगे चंद्रारकौ रथचरण पाणी सर इति दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृण माडंबर विधि। हे शिवा, आपके लिए तो त्रिपुरासुर एक सूखे घास की तिनके के बराबर था, फिर भी आपने ये आडंबर रचना की कि पृथ्वी को रथ बनाया, विष्णु को तीर बनाया है, और ये सब के माध्यम से मारा त्रिपुरासुर को। ये आडंबर आप चाहते तो संकल्प से ही खत्म हो जाता, फिर भी आडंबर शर्त उसने रखा था, शर्त अनुसार ही आपने उसको मारा। तब से भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरा हरा, और हम भी त्रिपुरासुर होकर बैठे हैं अभी है? हम अभी क्या हैं? त्रिपुरासुर होकर बैठे हैं। और हमारी ये आसुरी वृत्ति कब नष्ट होगी? असुर शब्द का अर्थ क्या है? आदिगुरु सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी ने गीता में असुर शब्द का व्याख्या की है, असुसु प्राणेशु इंद्रियेशु रमंती इति असुरः। असु शब्द का अर्थ प्राण, गतासु न गतासु च नानसो चन्ति पंडिता, और प्राण शब्द का अर्थ इंद्रियां, और इंद्रिय और विषय के संयोग में जो रमण करे, हाँ, इंद्रियों से विषय ग्रहण करना ही उसको आनंद मानता हो जो, वह असुर। आप उस आम का रस पियोगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तो असुर आप सिद्ध हो गए बस, क्योंकि रस का और जुवा का संयोग हुआ। रस और जुवा के संयोग को तुम आनंद मान रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या हुआ है? क्या हुआ बोलो है? क्यों डर रहे हो? असुर। और प्रवचन सुनते समय आनंद आ रहा है कि नहीं? शब्द और विषय के संयोग से आनंद आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नाम क्या हो गया? लेव जी है? ये तो असुर। एयर कंडीशन में बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं? तो इंद्रिय को ठंडा लग रहा है कि नहीं? क्या हुआ? असुर माने इंद्रिय, और इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, उसको तुम आनंद मान रहे हो, तो माने असुर। असुसु प्राणेशु इंद्रियेशु रमंती इति असुर। और ये इंद्रियों से विषय के माध्यम से होने वाले आनंद की अनुभूति असुर ही करते हैं, और इस भाव से निवृत्ति कब होगी बोलो? जब ब्रह्म विद्या से कारण शरीर, वासनामय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तीनों रथों का नाश होगा, तब तुम्हारा आसुरी भाव से निवृत्ति होगी। तब क्या होगा? ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, तब असुर हो गए। ज्ञान से जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी, अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होगा, तब जाकर तुम्हारे जीवात्मा के हमारे आसुर भाव से निवृत्ति होगी। वो तीन रथ का नाश करने वाला कौन? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कौन है? साक्षात भगवान शिव ही ब्रह्म विद्या है, इसीलिए त्रिपुरा हरा। भाई इस श्लोक को पूरा कल करेंगे है? समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, 5:30 से 7। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम।